तो ये भगवान का और मनुष्य के बीच में का एक संवाद है। तो भगवान को मनुष्य बोलता है, भगवान मैं आपको एक प्रश्न पूछूं क्या? तो बोलता है श्योर। तो मनुष्य बोलता है कि आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मनुष्य पूछता है कि आपने आज मेरे दिन में दिन भर में जो घटनाएं हुई वो क्यों क्यों घटने दिया उसको? सब सब तकलीफ वाली घटनाएं। तो क्या हुआ? तो जब मैं देर से उठा, हाँ ठीक है, फिर मैं कार स्टार्ट करने गया तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा, जब मैं लंच को बैठा तो मेरा सैंडविच जो बनाया गया वो गलत बनाया गया, मुझे बहुत टाइम पास हुआ मेरा पढ़ने का, ठीक है। जब मैं घर वापस आ रहा था तो मेरा फ़ोन डेड हो गया, जैसे मैंने एक कॉल पिकअप किया तो फ़ोन डेड हो गया, भगवान ने कहा ठीक है। उसके ऊपर जब मैं घर पहुंचा तो मैं जाके सोचा कि मेरे पैर को मसाज करने के लिए मशीन में बैठ जाऊं, पैर रखूं मशीन में और रिलैक्स हो जाऊं, तो मशीन चालू ही नहीं हुआ, एक भी चीज़ सही नहीं हुई आज। ऐसा आपने मेरे जीवन में आज क्यों किया? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसको बताता हूँ क्यों हुआ ऐसे। तभी उसका मूड कैसा है? कंप्लेनिंग मूड में है, ये ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हर चीज़ एक तो गलत होती ही गई। भगवान ने कहा कि देखो, मृत्यु दूत मतलब यमदूत वो आपके बिस्तर में सुबह सुबह हो मंडरा रहा था, तो मैंने मुझे देवदूत मतलब मेरे दूतों को भेजना पड़ा उसको समझाने के लिए कि चले जाओ यहाँ से। इसलिए मैंने आपको देर तक सोने दिया क्योंकि मृत्यु दूत आपके ऊपर मंडरा रहा था, मैंने मेरे दूत को भेजकर उसको परास्त करके दूर कर दिया। ओह ओह, ऐसे कहा उसने। फिर भगवान ने कहा कि आपकी कार चालू नहीं हुई इसलिए क्योंकि आप जिस रास्ते से जाने वाले थे उस रास्ते से एक दारू पीकर ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे नहीं इच्छा थी कि आप उस समय उसके सामने ड्राइविंग करें ताकि आपका एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए जानबूझ के आपकी गाड़ी को मैंने चालू होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपको आपका आज का जो नौकरी है, आज का छुट्टी करना आपके लिए मुमकिन नहीं था, एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस चौकी पंचनामा, तो आपका टाइम पास हो जाएगा, इसलिए मैंने गाड़ी को देर से चालू किया, तब तक वो सारा भी गाड़ी लेके आपके रास्ते से आगे चला गया, फिर आप अपने रास्ते से काम पे चले गए। ओह अच्छा, तो उसको ज़रा संकोच हो गया, शर्म आ गई उसको। फिर उसने बोला कि जो व्यक्ति आपका रोज़ सैंडविच बनाता था ऑफिस में वो आज बीमार था, और मेरी ये इच्छा नहीं थी कि वही आपके लिए सैंडविच बनाए ताकि उसकी बीमारी आपको लग जाए, इसलिए मैंने दूसरे से सैंडविच बनवाया जो गलत हो गया आपके लिए, उससे आपका बीमारी बच गया। ओह, उसको बहुत संकोच हुआ सुनकर ये। फिर भगवान ने कहा कि आपका फ़ोन डेड हो गया क्योंकि जो व्यक्ति आपको आज कॉल करने वाला था जिसका फ़ोन लेते ही कट हो गया, वो झूठी गवाही देने के लिए आने वाला था आपको चीट करने के लिए, इसलिए मैंने आपको उससे बात भी नहीं करने दिया, फ़ोन को ही वहाँ पर डेड कर दिया ताकि उससे बात ही नहीं हो सके आपकी, क्योंकि अगर फ़ोन चला रहता और वो फ़ोन कट हो जाता तो दोबारा वो करता और दोबारा आप उसको उठाते, इसलिए मैंने उसको तुरंत ही डेड कर दिया फ़ोन को। ओ, एक गलत आदमी आपसे कुछ बात करना चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी कि वो आपसे बात करे, इसलिए मैंने फ़ोन को डेड कर दिया, उसका फ़ोन आते ही आपने उठाया और फ़ोन डेड हो गया।
आपको चीटिंग करने वाले थे,
वो व्यक्ति चीटर था, यानी भाई डिटेल में मत जाओ, वो व्यक्ति गलत था जिससे आपके बात करने की ज़रूरत नहीं थी और वो आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपका कॉल आते ही मैंने उसको फ़ोन को ही डेड कर दिया। तो उसको ओ भगवान, अच्छा ऐसे था क्या? और फिर घर पर आप घर आए रात को और आपको फुट मसाजर में फुट का मसाज करना था, लेकिन उस फुट मशीन में ऑलरेडी शॉर्टिंग हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, और अगर आप उस पर बैठ के वो चालू होता तो आपका पूरा घर लाइट ऑफ हो जाता, और मुझे मालूम था कि आपको इतने दिन दिन भर कष्ट होने के बाद में रात को घर में अंधेरे में रहने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने रात का वो शॉर्ट सर्किट होके अंधेरे में आपको डालने का घटना नहीं होने दिया। ओ, मैं बहुत धन माफ़ी चाहता हूँ भगवान, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं माफ़ी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास रखना सीखो, मुझ पर विश्वास रखना सीखो कि जो भी मैं करता हूँ आपको बुरा बुरा लगे अच्छा लगे वो आपके लिए अच्छे के लिए होता है। ओके गॉड, आई ट्रस्ट यू। तो भगवान कहते हैं कि मेरा प्लान जो मैंने आपके लिए आज बनाया है वो आपके प्लान से हमेशा बेहतर होता है। आप एक प्लान करके जाते हो और जब वो नहीं होता है तो आपको दुख होता है, लेकिन जो मेरा प्लान है जो जिससे आपको दुख हो रहा है वो हमेशा आपके प्लान से आपके लिए अच्छा ही होता है। इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं आपको विश्वास रखूँगा और अभी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आज मेरे लिए जीवन भर दिन भर में हुआ। तो यू आर वेलकम जाय माई चाइल्ड, इट वॉज जस्ट अनदर डे बींग योर गॉड एंड आई लव लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन। मैं हमेशा मेरे बच्चों से प्रेम करता हूँ और मैं आपका भगवान हूँ, इसलिए मुझे आज भी आनंद हुआ कि मैं आपकी देखभाल कर सका। ऐसे कई चीज़ें होती हैं। मुझे ना हमारे गुरु भाई इतने मतलब कृपा है हमारे पर, इतने गुरु भाई इतने अच्छे हैं। कई लोगों को ऐसा स्वप्न आया है, मैं आपको एकदम हृदय के अंदर की बात बता रहा हूँ। कई लोगों को सपना ऐसा आया है कि कई प्रकार के सपने कई लोगों को आए हैं जो हमको कभी नहीं आए, लेकिन गिरिराज प्रभु को और उसकी पत्नी को कई बार आए हैं। वर्ष भानवी के बारे में, वर्ष भानवी ऐसे ऐसे होता ना, गोपी कैसे होती है जो भगवत धाम जाने के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल वो है ना जानवा माता जी की बेटी, उसका नाम क्या था, श्यामा कुमारी, श्याम सुंदरी है ना, वो श्याम सुंदरी कई उनके सहेलियों के फ्लैट सपने में आई, एकदम ऐसा सज सज कर पूरा, जैसे गोपियां कैसे होती ना, जैसे आप गोलोक वृंदावन गई तो आपका जाने के बाद स्वप्न में आई और बोले आप लोग क्यों चिंता करते हो, आप लोगों को भी वही आना है जहाँ पर मैं गई हूँ। ऐसे वो लिबरेटेड कंडीशन में आके बताया उसने, जो स्वप्न देख रहा है उसको पता चल रहा है कि शी इज लिबरेटेड नाउ, शी इज नाउ इन गोलोक वृंदावन। ऐसे कई उनके क्लोज फ्रेंड्स को स्वप्न आया था। तो श्यामा रानी को और गिरिराज प्रभु को ऐसे कई बार स्वप्न आए हैं कि वार्षभानवी गोलोक वृंदावन में है और एकदम सुंदर शरीर में और सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके वो भाग भाग के आती है श्यामा रानी के गोद में और कहती है क्या मतलब वही माता जी जो भी कुछ है। तो श्यामा रानी मतलब उसको बोलती है कि अच्छा इसके लिए सब कुछ नीचे नाटक किया था आपने, और गिरिराज प्रभु को ये सपना आया, अच्छा दिस इज द रीजन व्हाई यू डिड ऑल द ड्रामा देयर डाउन। मतलब वो कह रहे हैं कि हम सब लोग गोलोक वृंदावन में हैं, विश्वरूप दास भी है, विजयेश्वरी भी है, गिरिराज प्रभु भी है, श्यामा रानी भी है, वहाँ पर वो छोटी सी वार्षभानी भाग भाग के आती है गोद में और हंसती है, और उनको तुरंत समझ में आता है कि ये सब लोगों को गोलोक वृंदावन जाने के लिए सब ये सब ड्रामा नीचे किया गया था। अभी ये एक ड्रीम है, सच्चा है झूठा है हू नोस, बट उसमें एक बहुत बढ़िया मैसेज तो हम ले सकते हैं कि गोलोक वृंदावन में जाना ये सब चाहते हैं लोग, और मैंने तो बहुत बार प्रार्थना भी किया है कि अगर जाने का स्पीड, अगर जाने का जो प्रक्रिया है वो अगर स्पीड बढ़ने के लिए कुछ करना है तो भी आप कर सकते हो। ऐसे मैंने भगवान को बहुत प्रार्थना किया कि समझ अभी 10 साल लगने वाले हैं, 20 साल लगने वाले हैं, उसमें 2 जन्म लगने वाले हैं, 10 जन्म लगने वाले हैं, तो आप संकोच मत करना। मैंने ऐसा प्रार्थना किया है पास्ट में, आप संकोच मत करना, अगर एक जन्म में करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना होगा, उसके लिए स्पीड अप करना होगा तो आप कर सकते हो, संकोच मत करना, बिना संकोच कर देना। तो समझो भगवान ने अगर उसको सुन लिया समझो और उसको कुछ करने का प्रयास किया तो ऐसे ही कुछ होगा ना जो हमको, अरे विश्वास भी नहीं होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन समझो ये होने के बाद में इस लाइफ के एंड में हम गोलोक पहुंच गए तो भगवान को धन्यवाद करेंगे ना, अच्छा कि आपने स्पीड अप किया प्रोसेस, थोड़े में हो गया काम ना, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो गया कुछ समय के लिए, उस समय चिल्लाए रहे रोए वो कुछ भी हो गया, कष्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अभी वो सबके बाद में अगर हम अपने आप को गोलोक में पाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, एवरीथिंग इज़ वर्थ ऑल दैट, सब कुछ बढ़िया है ना उसके लिए। तो ऐसे ही एक बार अकबर और बिरबल ऐसे बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, और वो अकबर को मूड आया कि आज मैं अपने हाथ से फल काटूंगा, तो फिर वो अकबर फल काटने लगा, बिरबल भी अपने हाथ से काटने लगा, और बात काट करते करते काट रहे थे तो वो अकबर की उंगली कट गई। तो बिरबल ने कहा जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से अच्छा ही होता है। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उसको, बोले मेरी यहाँ उंगली कट रही, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, तो बोले भगवान की इच्छा से अच्छा ही हो रहा है, ठीक है देखता हूँ तुम्हारा भगवान की इच्छा से कैसे अच्छा होता है, चलो इसको अरेस्ट करो, जेल में डाल दो उसको, डाल दे जेल में उसको। बहुत गुस्सा आया था उसको कि मेरा इतना जिगरी दोस्त ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो दिन बीते, अकबर बीरबल जेल में है और अकबर को शिकार खेलने का मूड आता है, तो फिर वो किसी को लेकर जाता है शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने जाता है तो खोता है अपने आप, खो जाता है जंगल में, और फिर उसके साथी भी खो जाते हैं, वो अकेला बचता है, और वो अचानक एक भिल्ल जाति के समाज में पहुंच जाता है, ऐसे जंगली लोगों के बीच में, और ढांगा कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं अजीब सा, और मशाल जला के रखा है, और वहाँ पर जाता है तो सब लोग उसको पकड़ लेते हैं, बोले अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, देवी को बलि देना ही था, कोई मिल गया देवी देव बनी देने के लिए, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो अकबर वीर शूरवीर है लेकिन अकेला है वो, तो सब लोग पकड़ लेते हैं उसको, तो उनका सो कॉल्ड गुरु आता है, बोलता है बलि देने के लिए पहले मुझे परीक्षा करनी होगी कि बलि सही है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, तो उसको पूरा कपड़ा वपड़ा उतार देते हैं, उसको चेकअप करते हैं, तो उसकी एक उंगली कटी मिलती है, तो बोलते ये तो अधूरा है, ये तो पूरा नहीं है, इसका बलि नहीं दे सकते, छोड़ दो इसको, ये तो अयोग्य है, जाने दो उसको। तो राजा को समझ में आता है, अरे बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज मालूम पड़ा कि ऐसे अच्छा हो गया, तो एकदम उत्सुकता से घर में लौट के आता है बहुत मेहनत करके, और बीरबल को वो रिहा कर देता है, और फिर वो फिर एक बार फल खाने बैठते हैं तुरंत, तो पूछता है लेकिन बीरबल मेरे को समझ में नहीं आया कि तेरे लिए कैसे अच्छा था ये, मेरे लिए समझ गया अच्छा कैसे है, मैं तो बच गया, लेकिन तेरे लिए कैसा अच्छा था, तू जेल में पड़ा था इतना दिन। बोलते साहब जी जब भी आप शिकार खेलते हो तो मुझे लेके जाते हो, जब भी आप शिकार खेलते हो तो हमेशा मुझे साथ में लेके जाते हो, इस बार मुझे लेके जाते तो मैं तो अच्छा था, आपकी उंगली कटी हुई थी, आप बचते और मैं कट जाता, क्योंकि मैं जेल में था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी मेरा नंबर था आपकी जगह पर। तब समझ में आया कि दोनों के लिए अच्छा था वो, खाली उस समय जब वो हुआ तब शायद समझ में नहीं आएगा वो ये कैसे अच्छा था, चाहे उस समय आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बाद में आएगा तो भी अच्छी बात है, कभी भी समझ में नहीं आया तो भी अच्छी बात है, अगर श्रद्धा है, ट्रस्ट मी, भगवान कहते हैं कि मेरे पर विश्वास रखो, समझ में आपको आए या ना आए कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बच्चा है आप देखें ना, 3-4 महीने का बच्चा हो गया ना, 5-6 महीने का, तो जो होता है ना मच्छरदानी, वो रखने से उसको अच्छा लगता नहीं, वो तुरंत पाँव से हाथ से उसको ऐसा ऐसा करके उसको किक मार के निकालने प्रयास करता है, तो बच्चा क्या सोचता होगा, मम्मी को समझता नहीं क्या मुझे अच्छा लगता नहीं, फिर भी वो रखती बार बार, फिर बच्चे फिर मम्मी उसको निकाल लेते हैं, बच्चा सो जाता है गहरी नींद में, फिर जाके उसको वापस रखती, फिर वो सुबह उठता है, अरे फिर रखे मेरे ऊपर उसको, फिर लात मार के उसको फेंक देता है। तो बच्चा जो उसको बोलने को आता नहीं, वो छोटा बच्चा है, फिर सोचता क्या होगा, कैसी मम्मी है ये, समझता नहीं क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छा लगता नहीं मुझे, कितनी बार लात मार के निकाल के दिखा रहा हूँ उसको मैं कि मुझे ये छतरी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में वो कर सकती है ऐसा, लेकिन रात में जब मच्छर आते हैं तो रात में वापस रखेगी जाके, तो बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा उसके बुद्धि के अनुसार कि रात को मच्छर आते हैं, उसके मलेरिया हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, नींद टूट सकती है, कभी समझेगा नहीं उसको, और ना बच्चा बच्चे को माँ कभी बड़ा होने के बाद समझने को बैठेगी, बच्चा तुम पता था क्या, 7 महीने का था ना तू, तो भी मैं उसको बार बार तुलात मारता था मच्छरदानी पर, और मैं बार बार उसको रखा करती थी, उसको पता था कारण क्या था, तो मच्छर बहुत थे, वो आपको वो बताने का भी प्रयत्न नहीं करेगी, उसके आगे उस समय का देखभाल चालू करेगी, वो पिछले का क्या क्या हुआ देखेगी नहीं, आपको बताएगी नहीं, बच्चा मालूम है कि आप 3 महीने के साथ में एक बार सोए थे ना, तो सांप आया था, तो मैंने आपको जगाया नहीं, मैंने सांप को सब लोगों को बुलवा के पकड़ा के फ्री कर दिया, तभी बच्चे को जगाया था, क्या बच्चा उठो तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा काम किया है, पता है क्या तुम्हारे लिए मैंने सांप से बचाया तुमको। तो कई चीज़ें ऐसी होती है भगवान के हमारी कि कैसे हम लोग अच्छी तरह से बचते हैं और क्या हमारा होता है हमको पता ही नहीं है, कितनी बार माँ ने मच्छर को आपके बदन पे बजते ही मारा होगा और आपसे बचाया होगा आपको, कितनी बार किसी भयंकर घटना से आपको बचाया होगा, थोड़ी वो लिस्ट बना कर रखती, बड़ा होगा तो सब बताऊँगी उसको, जब मेरे झगड़ा करके सब उसको लिस्ट बताऊँगी, देखो तेरे लिए क्या क्या किया, कभी भी नहीं करते वो। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान भी कई चीज़ें ऐसे करते हैं जो उनको कष्ट होता है उसका, जैसे मुझे इतना दुख हुआ था कि मैं जिंदगी भर आईआईटी के जाने का प्रयास किया था, मतलब बोलते ना सांस भी आईआईटी का लिया था, विचार भी आईआईटी का किया था, खाया भी आईआईटी था, इतना मेरा मन में आईआईटी था। और मुझे आईआईटी मिल भी गया, बॉम्बे में एडमिशन भी मिल गया, फिर भी मुझे घर से भेजा नहीं गया। तो मुझे लगा क्या है सभी, इतना दुख हुआ मुझे उस टाइम पे। लेकिन अगर वो वैसा नहीं होता ना तो मैं हरे कृष्णा डिवोटी नहीं बनता। वो जो मुझे घटना जीवन में हुई, मुझे इतना अंतर्मुख कर गई, इतना मुझे विचार करने के लिए प्रवृत्त किया उस घटना ने, कि मैंने बहुत गहरा समुद्र में बैठकर घंटों घंटों में उसका विचार करता था कि क्यों ऐसे, क्यों ऐसे, क्यों, क्या जीवन है ये, ये कौन करता है, करता है क्या, मेहनत का कुछ परिणाम होता है कि नहीं होता है, मेहनत का कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता है, कि मेहनत के बाद भी कोई और शक्ति है जो तय करती है कि नहीं होना है इसको, या होना है, नहीं देना है, देना है, और अगर शक्ति है तो कौन शक्ति है वो, उसका हमारा कनेक्शन क्या है, और क्या कितने सारे हजारों प्रश्न मेरे मन में आते थे उस समय। तो जब वो सही जिज्ञासा मन में जब उत्पन्न हुई तो भगवान ने बराबर सही जगह पर पहुंचाया उसका उत्तर देने के लिए। तो आज मुझे वो दुख नहीं है, कभी कभी लगता है ऐसा आईआईटी में जाने के बाद, अरे मैं तो यहाँ पर पढ़ने वाला था, लेकिन आज मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि आज मैं मेडिकल में आकर जो जो कर पा रहा हूँ वो मैं आईआईटी में होकर नहीं कर पाता था, क्योंकि डॉक्टरों की संस्था बनकर यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है हरे कृष्णा में, आईआईटियों की संस्था नहीं बनी अब तक बिजनेस वेंचर नहीं बना है अब तक ना आईआईटी का, मेडिकल लोगों का बना है, और मेडिकल के माध्यम से कितनी बड़ी सेवाएं हो रही है, कितने प्रकार की सेवाएं हो रही है। तो वो समझने में टाइम लगा मुझे, लेकिन समझ में तो आया बाद में, भगवान के गुरु की दया से समझ में आया। तो ऐसे आज जो हो रहा है वो शायद मुझे आज समझ में नहीं आया होगा, नहीं आता होगा, लेकिन भविष्य में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आज अगर मुझे ये पता है कि पिछली बार जो हुआ था तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो भगवान की इच्छा थी, तो आज जो हो रहा है ये भी शायद भगवान की इच्छा होगी। इस लाइक कॉल है, इस कॉल इज अ कॉरोलरी, कॉरोलरी मतलब डेरिवेशन, इट्स नॉट अ फैक्ट, बट विद पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन डिराइव अ कंक्लूजन कि ओके, लास्ट टाइम जब मैंने पीला आम खाया था तो मीठा था, तो अभी लगता है ये आम भी पीला है तो ये मीठा होगा, ये हमारा लॉजिकल कंक्लूजन है, तार्किक निर्णय हमारा। पिछली बार जब वो देखा था कटहर तो उसके दांत बहुत दूर दूर हो गए थे, तो वो पका हुआ था, शायद इसके भी दांत दूर दूर हो गए, मतलब ये भी पका होगा, या खुशबू आ रही थी तो लगता था कि ये पका हुआ है, अभी ये भी खुशबू आ रही है, मतलब ये पका होगा। इस तरह से हमको अंदर से अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, और जब हमको हमारी जो अनुभूति हमको हो रही है समझो, और उस पर भी हमको डाउट है कि हमको जो लग रहा है वो सही है क्या, तो हम क्या करते हैं, गुरु साधु और शास्त्र से प्रमाणित करते हैं उसको, उनसे कंसल्ट करते हैं, फिर हमको उसकी पुष्टि होती है या तो वो कैंसिल हो जाता है, या तो पुष्टि हो जाती है, दोनों में से एक होता है। आज राधा गोपीनाथ जी का प्रतिष्ठापना दिन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 1987 में है, कुछ लोग कहते हैं 1988 में है, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि 1988 में मैं ऋषिकेश में था तो मैंने वो अटेंड नहीं किया है, तो मोस्टली वो 1988 में होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हाँ 87 का, 87 था, ओके 87 में मुंबई में था मैं जे जे हॉस्पिटल में पोस्टिंग कर रहा था उस टाइम पे, इस जुलाई महीने में, तो मैं कैसे नहीं जाऊँगा, राधा गोपीनाथ का इंस्टॉलेशन हो रहा है, राधानाथ महाराज जी, इतना उस समय हम लोग ही थे, कुछ ही लोग थे वो, उसके बिना मतलब हर फेस्टिवल में हम लोग हुआ करते थे, इतना घंटों घंटों नाचते थे, मुझे पता नहीं चल रहा है जब क्या, जब कभी नहीं 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 जब मैं डिवोशन में आया तो मैं जुहू में गया था मैं ना आईआईटी में नहीं जा पाया ना, तो फिर मैं मेडिकल में गया, तो मुझे मेडिकल में एक कर्ण का भी इंटरेस्ट नहीं था, एक कर्ण का मतलब आधा कर्ण, पावना कर्ण और एक बिंदु भी, बिंदु का भी इंटरेस्ट नहीं था, नो इंटरेस्ट, मतलब आई यूज़ टू हेट बायोलॉजी। और मुझे लगा कि अरे इतना हेट करने के बाद में उसी में मुझे वही गॉल्गी एपरेटस, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही सब सेल्स बायोलॉजी, क्या है सब ये, इतना फ्रस्ट्रेशन आया था मुझे ना, तो मैं कई बार ना चलते क्लास में उठ के चला गया घर पे कि नहीं करना है मुझे, आई डोंट वांट टू, अमेजिंग ना, मतलब सब पूरा ऐसा लेवल का क्लास होता था, स्टेप की क्लास हो रही थी हमारे ऑडिटोरियम के साथ ना, ऐसे 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 ऊपर नीचे लेक्चरर लेक्चर दे रहा है, तो मेरा 151 नंबर था, तो वहाँ पर बैठ के मैं सीधा सा उठ के सीधा मैं घर जाया करता था साइकिल से। हाँ, फर्स्ट एम बी बी एस फर्स्ट टर्म 5 मार्क 100 में से एक सब्जेक्ट में, एक में 11 मार्क, एक में 3 मार्क। फिर सेकेंड एम बी बी एस सेकेंड टर्म टर्म के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही थोड़ा सा 7, 8, 15, 12, 13। और थर्ड थर्ड टर्म में भी ऐसे ही। तो अभी क्या है, तो फेल ही होना है। तो फिर एक दिन लाइब्रेरी में गया, देखा कि अरे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं थप्पी लगा के, ये तो फेल होने का नाम उसके आएगा। अभी तो ये तो टर्म में कोई देखता नहीं है, फाइनल आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर 3 to 5 स्लीप 1 महीने के लिए, 3 AM to 5 AM उतना ही सोने का और दिन भर पढ़ाई करने का, और पास हो गया मैं। लेकिन इंटरेस्ट नहीं था मुझे, इंटरेस्ट नहीं था। तो उस समय मैं IIT में जाता था मेरे दोस्तों के साथ बैठने के लिए, जो IIT में जा सके थे, जिनके पेरेंट उनको भेज सके थे। तो वो सैटरडे संडे में वहाँ पर टाइम पास करता था IIT के वातावरण में। तो उधर मेरे जो भक्तों से मुलाकात हुई ना, तो उनकी तरफ से मैं उन्होंने मुझे बहुत प्रीच किया, पर मैं बहुत ऐसा कैसा ना विद्रोही भाव में था उस समय, क्योंकि इतना मेहनत करके मैं रैंक होल्डर था SSC में, और मैंने मेडल्स लाए थे और क्या क्या प्राइजेस लाए थे, फिर भी मुझे इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे IIT भेजा नहीं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था घर पे। मेरे इतने भाई थे बड़े बड़े सब लोग, और पिताजी थे, सब लोग ने मिलकर भी भेजा नहीं, अकेले ही भेजा नहीं, किसी ने नहीं भेजा मुझे, मुझे बहुत क्रोध आया था उसका। तो फिर मैं एकदम ऐसा किसी में मुझे आई डोंट वॉन्ट टू बी अटैच टू एनी थिंग जो मन में आया वो करने का। तो फिर मैं आर्गूमेंट चालू था मेरा, एक हाल मैंने बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट किया सबके साथ में, दयाराम प्रभु, महेश कोचरकर के भाई, बड़े भाई अपने ना, महेश कोचरकर उसके बड़े भाई दयाराम प्रभु मायापुर के, हाँ इज माई फ्रेंड। उसको मैंने बहुत गाली दिया, उसको मैंने बहुत बुरा भला कहा हुआ है, उसको क्या नहीं बोला मैंने, हर चीज़ के लिए मैंने उसको अच्छी तरह पकाया उसको मैंने। तो एक बार बोला, वो एक साल के बाद में बोला, ये सब 82 में हो रहा था सब ये झगड़े वगड़े जो भी है, वो बेचारा IIT से जुहू में आकर महाप्रसाद लेकर, फिर जुहू से भाईखाला सैंडर्स रोड पे मेरे हॉस्टल पे आता था महाप्रसाद देने के लिए, और मैं उसको देखकर जानबूझ के उसको भगाने के लिए एग मसाला मंगाता था उसके सामने, उसको इरिटेट करने के लिए जानबूझ के उसके सामने मैं वो करता था, डोंट कम, बस मत आ तू मेरे पास अभी। तो उसने बाद में बोला कि अरे यार तुमको मैंने अभी इतना सा समझाया, अभी एक काम कर, अगर दोस्ती है हमारी समझो, दोस्त तो कम से कम मानते हो मुझे, तो फिर एक बार मंदिर में आ जाओ। और अगर कॉलेज में हम लोग कंटेम्प्रेरी, मतलब वो एक ही बैच के थे हम लोग, और IIT में जाने लगा ना मैं तो उधर ज़्यादा हो गई। एक हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जो मेरे कॉलेज में था रूपारेल में, और वो उसका IIT का क्लासमेट था दयाराम प्रभु। जब मैं उसको मिलने के लिए IIT जाता था तो वो फ्रेंड मुझे मिलता था, मतलब दयाराम प्रभु और वो मिलते थे और वो तो प्रीच करते थे मुझे, इसलिए दयाराम प्रभु से मुलाकात हुई मेरी। तो मुझे लगा कि एक बार मंदिर आ जाओ, और मंदिर आने का आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर आप छोड़ दो उसको। तो फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रजेश्वरी को मिला जुहू में, बोला चलो आज जुहू में मिलते हैं, तो जुहू में मिला और उसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर मैं जुहू मंदिर आया, और रात में वहाँ पर प्रसाद खाया, तो थोड़ा ठंडा था प्रसाद, खाते मुझे डायरिया हो गया, मैंने बहुत गाली दिया दयाराम प्रभु को, तुम्हारा मंदिर क्या, तुम्हारा मंदिर कुछ हाइजीन नहीं, कुछ नहीं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट फूल्स, यू नो, तुम कुछ भी खिलाते हो कुछ भी खाते हो थोड़ी चलेगा ऐसा, और ऐसा मतलब मैं तो बहुत उसको झाड़ता था। एनीवे बहुत बेचारे दयालु हैं प्रभु जी। तो रात को मैं रहा, उस समय 3 बजे उठाया सुबह, 3 बजे उठाया और बड़ा बकेट में सब लोग स्नान कर रहे थे, वो मुझे अभी भी याद है, वो यादवाय माधवाय केशवाय नमः, दयाराम प्रभु गा रहे थे और वो स्नान कर रहे थे, मुझे भी बकेट में स्नान करवाया, फिर स्नान किया, और उसने अपने हाथ से मुझे तिलक लगाया और मंगल आरती के हम गए, 10 मिनट पहले ही पहुँचे, 4:21:22 को ही पहुँच गए उधर। उधर वो अमिया विलास महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, सब लोग बैठे, थोड़ा अंधेरा था, प्रभुपाद क्या लाइट थी, मैं गया उधर बैठा देखा। फिर 4:30 को 3 लोग आए बाहर, तब एक ही साथ बाहर आए, एक ही साथ में उन्होंने शंख धोया, एक ही साथ में उन्होंने शंख को मुंह लगाया और आवाज
एक ही आवाज,
फिर 3 बार ऐसे एक ही बार आवाज, एक ही साथ में आवाज, फिर 3 बार तीनों लोग एक ही साथ में वापस धोया और तीनों लोग एक ही साथ में पर्दे के अंदर गए। फिर कुछ बार कुछ समय बाद 3 घंटियाँ बजी और तीनों दरवाजे एक साथ में खुले, पर्दे खुले पहले, पहले दरवाज़ा खुला, फिर शंख खुला, शंख बजा, फिर पर्दा खुला, और पर्दा खुलने के बाद में जो मैंने देखा तो मेरा हरे कृष्ण फिर सब आर्गुमेंट समाप्त हो गया पूरा। उस 25 मिनट के अंदर सारा आर्गुमेंट खत्म समाप्त हो गया मेरा। फिर हम लोग जुहू में वॉकिंग करने गए उसके बाद में, और सब लोग जब कर रहे थे मैं भी फिर कुछ कर रहा था। फिर उधर श्रीधर महाराज का प्रीवियस इवनिंग में लेक्चर होता था, भूल गया बताने को मैं। उसके बाद में हम लोग प्रभुपाद क्वार्टर्स गए थे 5th फ्लोर पे, श्रीधर महाराज ने वहाँ पर क्लास दिया था, बहुत जॉली क्लास था, हंसते हंसते जोक मारते हुए क्लास दिया था प्रभुपाद के क्वार्टर्स में। फिर सोए थे, फिर सुबह उठे थे, तो उस दिन शायद भागवतम भी श्रीधर महाराज का ही था। उधर भी उन्होंने बहुत जॉली क्लास दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने बोला प्रभु जी क्या करना है बताओ, तो मुझे दुकान में ले गए उधर के, और एक किताब दिया साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, क्या करना है इसको पढ़ना है, ठीक है, और क्या करना है, एक माला ली, एक झोली ली, बोले इस पर जप करना है। जब तो सुबह सीख लेना कैसे करना है, मैं कितना करना है, उन्होंने कहा 4 माला करना है, ठीक है, और क्या करना है, एक कंठी माला लिया गले में बांध लिया बिना कुछ बताया कि इसका नियम क्या है क्या है, सब कुछ नहीं बताया, सीधा बांध दिया गले पे। मतलब ठीक है आज से नॉनवेज बंद और जब माना चालू चालू। फिर देखे गया मुझे महाप्रसाद, संडे को डिवोटी फीस्ट हुआ करती थी 15-20 आइटम की, तो हम लोग तो 2-2 प्लेट खाते थे एक साथ में पूरा अच्छा प्रसाद लिया, पेट भर के 9:30 को घर गया मैं, तो मम्मी वेट कर रही है मुझे, फिश ला के रखा है घर पे। तो मैं बोला कि मुझे भूख नहीं है आज, तो इच्छा ही नहीं है कुछ। तो मम्मी को आश्चर्य हुआ, अरे क्या हुआ तेरे को, एक संडे को घर पे आता है तो मैंने आपको फिश ला के रखा है, मेरे लिए लाती थी मम्मी मेरी। फिर सेकेंड संडे आया तो बोला वापस भूख नहीं, मुझे भूख नहीं है। कई संडे के बाद में मम्मी को मैंने रिवील किया कि मैं मंदिर जाता हूँ और खा के आता हूँ वहाँ से, और अभी मैं खाने वाला नहीं हूँ नॉनवेज वगैरह। तो पिताजी तक बात पहुँची, पिताजी ने बोला कि अरे ये थोड़ा सा जवानी के खेल है सब, ये कुछ दिन बाद सही हो जाएगा तो कई महीने बीत गए, फिर एक तो फिर भी नहीं सुना मैंने। वो 1983 के बाद तभी हॉस्टल में रहता था, इसलिए मेरा जाना आना किसी को पता चलता नहीं था ना, इसलिए मैं हॉस्टल को धन्यवाद देता हूँ। अगर घर से जाता था तो वो पकड़ते थे ना, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो। हॉस्टल से ही हम लोग वहाँ जाते थे, और हॉस्टल से वापस कार में भी हॉस्टल से जाते थे और घर हॉस्टल पहुँचते थे वहाँ पर। हाँ, तो हम लोग, मैं सबसे पहले गया तो अकेला था तभी मैं, है ना, और उसके बाद तुरंत मैं इनको लेके गया, उसके बाद तुरंत 5 दिन के बाद ब्रजेश्वरी को लेके गया मैं। और मुझे अभी भी याद है कि 5वें दिन मैं एकदम सीजन्ड प्रीचर की तरह उसको प्रीचिंग कर रहा था एकदम, अभी भी याद है मैंने क्या क्या उसको एग्जांपल दिए, क्या क्या बताया, क्योंकि मैंने एक साल पहले सुना था ना सब कुछ, यू नॉट दिस बॉडी और वो क्वांटम फिजिक्स है क्या, मैंने IIT में सुना था तो मैंने एकदम उसको नाम अभी भी याद है कि जुहू बस स्टैंड के से लेके जुहू मंदिर तक उसको मैंने पूरा फिलासफी सुनाया, वापस आते वक्त भी पूरा सुनाया, बस में जाते वक्त पूरा फिलासफी सुनाया। वो सुन रहे थे क्या हो गया इसको क्या करना होगा मुझे मालूम नहीं है उसने घर पे बताया कि प्रभु इनको ऐसा ऐसा जाके आए हो, तो वो भी चिंता में आगे भी शादी करेगा कि नहीं करेगा, वट क्या मालूम। फिर कुछ दिन के बाद में पता चला कि चाय कॉफ़ी और लहसुन प्याज भी छोड़ दिया तो मेरी सासू थी ना, मतलब सासू माँ, सासू ग्रैंड मदर इन लॉ, वो बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के अंदर ना लहसुन प्याज छोड़ना मतलब अल्टीमेट, वो केवल सन्यासी ही करता है वो काम, लहसुन प्याज केवल सन्यासी छोड़ देता है, बाकी और कोई नहीं छोड़ता है। तो उनको लगा कि अभी ये आदमी इसको छोड़ देगा, तो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो ये सब 83 की बातें हैं। तो 83 में जब मैं डिवोटी बना तो साल भर फिर महाप्रभु जी के घर पे, माता जी की ग्रैंड मदर इन लॉ, आजी आजी, हाँ डेथ हुआ उनका, वो बहुत चिंता में आ गए थे उसमें। तो 83 पूरा मैं जुहू और खार ऐसे हमारा चलता रहा। 84 की बात है, सॉरी 83 मुझे प्रीचिंग कर रहे थे 82-83 में, और 84 को मैं मंदिर गया 4 फरवरी को, जिस शादी हुई ना रूपमंजरी की, उस दिन उसको 30 साल पूरे हो गए उसी दिन, मैं महाराज को बताया बाद में। तो फिर एग्ज़ाम आई, फिर अक्टूबर तक मैं 16 माला शुरू कर दिया, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पढ़ता था वो साइंस ऑफ रियलाइजेशन, तो फरवरी से अक्टूबर तक 16 राउंड चालू हो गया, और फिर मुझे लगा कि मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया पढ़ाई में। और फिर मैंने सोचा कभी पढ़ाई करना है, अभी मैंने तो टाइम पास किया, तो धीरे 16, 12, 8, 4, उसके बाद में महाप्रभु जी हॉस्टल पे आए, रिजल्ट लगना बाकी था, हम लोग टेंशन में थे। तो उस समय हम लोग प्रोग्राम भी करते थे, नहीं उस समय प्रोग्राम सब कुछ नहीं था, तो महाप्रभु जी ने चैंट एंड बी हैप्पी एंड कमिंग बैक, ये दो किताबें नई नई आई थी उस समय, कट्टे लेकर हॉस्टल में आए थे वो, क्योंकि मैं जुहू मंदिर में एक बार मिले थे वो बीच में, और इंक्वायरी कर रहे थे कौन हो तुम क्या हो वगैरह वगैरह, तो वो क्लू पकड़ के वो हॉस्टल में आए थे, और उधर मेरे को वो किताब दी, एक थप्पी थप्पी दे दिया, बोला कि सबको बांटो इसको, और मुझे रिवाइव किया उन्होंने अच्छी तरह से। ये 85 की बात है, और वो जब आए उसके अगले हफ्ते 2 जून 1985 को मैं जब पहली बार खार गया, तब मैं माधवानंद प्रभु और मेरे एक और क्लासमेट को लेकर गया, वैसे ही धुआंधार वर्षा हो रही थी उस समय, मुझे 102 बुखार भी था उस दिन, लेकिन मैंने महाप्रभु जी को वादा किया था कि मैं भी वापस सोला माला करूँगा और हर फ्राइडे को आपके पास आऊँगा। तो माधवानंद प्रभु और मैं साथ में, मेरे को पकड़ के धीरे धीरे बुखार में लेके गए, जैसे खार पहुँचा बुखार ख़त्म हो गया मेरा, मेरे को इतना विश्वास आ गया ना, माई गॉड इमेजिन दिस। ऑफकोर्स मैंने 2 क्रॉसिंग लिया था, लेकिन फिर मेरे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये भगवान की कृपा है। तो मैंने फिर उस दिन सोला माला वापस चालू कर दिया, और 1986 में हम लोगों को इस्कॉन से बाहर कर दिया गया, रस्टी गेट, क्योंकि वो पूरी इस्कॉन की लंबी कहानी है, कीर्तनानंद महाराज और बहुत लंबी कहानी है वो। तो हम लोगों ने कीर्तनानंद महाराज से दीक्षा लिया, और कीर्तनानंद महाराज का फिर जोर से झगड़ा हो गया, और पूरे राधानाथ महाराज और सारे लोगों को उन्होंने इस्कॉन से बरी कर दिया। 86 में आए ना पहली बार, मार्च 86 को वो पहली बार इंडिया में आए, 17 साल के बाद, जब वो वृंदावन छोड़ के गए थे ना, उसके बाद 3 मार्च 86 को वो बॉम्बे आए पहली बार, फर्स्ट टाइम। वो सब इतिहास के बाद जब वो वहाँ से निकल गए ना, वो वहाँ से गए और वो न्यू वृंदावन गए, वहाँ दीक्षा लिया और वहीं पर रहने का आदेश मिला उनको, तो कीर्तनानंद महाराज ने उनको कभी वापस आने नहीं दिया इंडिया में। तो उसके बाद 17 साल के बाद भी वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए 3 मार्च को, तो उसके जनवरी में हमारी दीक्षा हो चुकी थी मेरी, और फिर 9 मार्च को बृहेश्वरी की दीक्षा हुई, उसमें राधानाथ महाराज ने यज्ञ किया था, और हमारी दीक्षा में श्रीधर महाराज ने यज्ञ किया था, और दोनों टाइम गुरु कीर्तनानंद महाराज थे। तो 9 मार्च को कृष्णचंद्र प्रभु और बहुत लोगों की दीक्षा हुई, इसमें बृहेश्वरी की दीक्षा हुई, और माधवानंद की शायद उसी टाइम पर हुई, आई डोंट नो, माधवानंद के बाद मई में हुई थी, एनीवे। सो फिर उसी साल में 6 दीक्षाएँ हुई, और उसी साल के एंड में उनको रस्टिकेट किया गया, तो हम लोग इस्कॉन के बाहर आ गए। तो हम लोग फिर श्रीनाथ जी प्रभु के घर में एक प्रोग्राम हुआ करता था, और एक प्रोग्राम महाप्रभु के घर पे हुआ करता था, हमारे कॉन्ग्रीगेशन का, एज पर द ऑर्डर ऑफ गुरु। फिर श्रीनाथ जी प्रभु ने वो लेडीज ऑर्डर हिंदू ऑर्फनेज में वो ट्रस्टी थे उनके ससुर के साथ, अरविंद मफतलाल के साथ में, तो उन्होंने वहाँ पर 2 रूम प्रोक्योर किए हमारे लिए, और जैसे रूम प्रोक्योर किए, मैं और ब्रजेश्वरी शादी करके वहाँ फुल टाइम ज्वाइन हो गए, और 2:05 हो गए हैं, ये हमारी कथा को समाप्त करते हैं।